तान तपः क्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषभ तेजससी प्रवृद्धा सत्सद्धया श्रवण संहृतया यथा स्यात्। हे इद्य, हे स्तुत्य और हे ऋषभ सर्वश्रेष्ठ, हे नाथ, वास्तव में आप प्रशंसनीय हैं और आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार से सब में श्रेष्ठ हैं। दुराशयाना रागिणा दुष्ट दुष्ट शब्दादि विषय प्रवण आशय अंतःकरण जैसा तेसा अत्यंत अशुद्धि युक्ता नित्य अर्थ। तो जो इस संसार में दुराशय हैं, उन दुराशय जीवों की शुद्धि विद्या श्रुत वेद श्रवण अध्ययन दान तप और क्रिया द्वारा नहीं होती है। जैसी शुद्धि आपके यश में बढ़ी हुई श्रद्धा द्वारा होती है। अतः दुराशय जीवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए आप इस जगत में अवतार लेते हो, कर्म करते हो। आपके कर्म मतलब यश में प्रवृद्ध सत श्रद्धया श्रवण संभृतया जथाशय। तो इस शब्द को समझना चाहिए, दुराशय आशय का अर्थ होता है अंतःकरण, जो भीतरी इंद्रियां है, इंद्रिया है, उसको अंतःकरण कहते हैं, भीतर का करण, भीतरी करण, उसको आशय कहते हैं। तो वह दुष्ट हो गया, दुह आशय है। शब्दादि विषय प्रवण, दूषित शब्दों को मनुष्य सुनना चाहता है, ये कोई भी जीव सुनना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है। तो इस तरह हृदय जो है प्राकृत वस्तुओं को पाने की लालसा से भर गया है, इसको दूषित आशय कहते हैं। इस प्राकृत जगत में हम सबका यह व्यक्तिगत अनुभव है, देख रहे हैं कि किस प्रकार से चित्त वस्तुओं को चाह रहा है। भगवत वासना हृदय में नहीं है, भगवान के लिए ललायक नहीं। प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, कुछ सोच रहा है, लेकिन क्या है हृदय में? हृदय में शब्द रूप रस गंध और वो भी सब दूषित, भगवत संबंध शून्य, इन सब वस्तुओं की कामना बनी रही है। जागृत ही नहीं, स्वप्न में भी, जब मनुष्य सोने चलता है तो स्वप्न में भी वह दूषित स्वप्न ही देखता है। बहुत बिरले ऐसे वैष्णव होंगे जो कभी साल में एक बार भगवान को देखते हुए सपना में, नहीं तो अधिकांश सपना भी देखते हैं तो विषयों। प्रत्येक जीव कीट पतंग से लेकर के देवता पर्यंत सबका चित्त इस प्रकृति को भोगने में लगा हुआ है, इसको दुराशय कहते हैं। तो ऐसे दुराशयों की शुद्धि, दूषित अंतःकरण वालों की शुद्धि, अत्यंत अशुद्धि से युक्त लोगों की शुद्धि कैसे होती? जथा निर्णाम निर्णाम विद्या श्रुता ध्यान दान तपह क्रिया आदि, विद्या उपासना, मतलब यहां देवता आदि की उपासना से विद्या, अध्ययनम पूर्वोत्तर भाग द्वयात्मक वेद अध्ययन, वेद के पूर्व भाग और उत्तर भाग, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा मतलब उपनिषद आदि और पूर्व मीमांसा मतलब कर्मकांड आदि, जो वेद की का अध्ययन करने से और श्रुत उसके अर्थ का श्रवण करने से, तप से उपवास आदि करने से, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत करने से, क्रिया वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म योग करने आदि से तथा शुद्धि न भवति, उस प्रकार से जीव की आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती है। जथा जैसे सत्वात्मनाम तेजससी श्रवण संभृतया प्रवृद्ध श्रद्धया स्यात्। सत्वात्मनाम सताम सात्विक मनस्का नाम मुक्षुणाम सतगुण प्रचुरांतः करणानाम तेजससी श्रवण संभृतया श्रवणेन भवद गुण श्रवणेन संभृतया परिपुष्टया दृढ़तरया अतएव प्रवृद्ध सत्श्रद्धया अभिवृद्धया सत्श्रद्धया स्यात्। द परम पावनस्य जसो बिताना है तो कर्म चरण की भाव। परम पावन जस का विस्तार करने के लिए आप कर्म करते हैं, अवतार लेते हैं, यह भाव। तो हृदय अशुद्ध हो चुका है जीवों का इस जगत में और विशेष करके मनुष्यों का, तो उनकी शुद्धि विद्या से नहीं होगी। उस तरह से होती है शुद्धि, लेकिन नाम मात्र। और श्रुत, श्रुत का अर्थ है वेद के अर्थ का श्रवण, और अध्ययन का अर्थ होता है वेद को धारण करना, याद कर लेना शब्दों को। और श्रुत का अर्थ अध्ययन, मतलब शब्द शब्द को भी पूरा पूरा याद कर लेना, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दोनों, और अर्थ को भी समझना, तपस्या करना। तप का अर्थ होता है अनशन आदि करना, या तप का अर्थ संन्यास ले लेना। कृष्णचंद्रायण आदि व्रत करना, और क्रिया का अर्थ वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, मतलब वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करना। इन सब के द्वारा निर्णय तथा शुद्धि मां भवती, ऐसी पूरी पूरी शुद्धि नहीं होती। जथा जैसा श्रद्धा से शुद्धि, तो जो श्रद्धा बढ़ी हुई है कहां ते जस से, भगवान का गुण सुनने से, भगवान का गुण सुनने में और अधिक श्रद्धा बढ़ गई हो, तो भगवत गुण श्रवण की लालसा से जीव की जितनी शुद्धि होती है उतनी और किसी भी चीज से शुद्धि। जब श्रवण की लालसा से शुद्धि होती है तो इसका अर्थ है कीर्तन की लालसा भी है। उपलक्षण ये अर्थ, मतलब आपके लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जीव की जैसी शुद्धि होती है, वैसे वैसी शुद्धि अन्य समस्त सत्कर्मों के आचरण से नहीं हो सकती है। विद्या से, श्रुत से, अध्ययन, दान, तप, क्रिया, बहुत बहुत दान देना, तप करना, अध्ययन से। संसार में तो ये सब बड़े ऊंचे ऊंचे कर्म हैं जिनको आज जीव कोई कर नहीं रहा है, मनुष्य भी नहीं कर रहे हैं। विद्या, श्रुत, अध्ययन, दान, तप, क्रिया, अब तो सब अपना पेट भरने पर लगे। अब तो केवल एक ही सवाल रह गया, पापी पेट का सवाल। अब क्या वो शुद्ध होंगे इस युग में, अध्ययन क्या करेंगे, संस्कृत का एक अक्षर ज्ञान नहीं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा नाम भी सुन करके नहीं समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन क्या करेंगे। और दान, तप, क्रिया, विद्या सब लुप्त। और कदाचित यदि कोई व्यक्ति इनको पूर्ण रूप में करे भी, ठीक ठीक करे भी, तब भी आत्यंतिक शुद्धि नहीं हो सकती है। उसके पाप आदि तो कट जाएंगे, लेकिन अविद्या नहीं जा सकती है। और अविद्या के कारण जो हृदय में वासना है भोगों की, वो नहीं जा सकती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के यश के विषय में यदि सुनने की लालसा हो जाए, सुनने लगे जीव भगवान के यश को, तो उसकी पूरी पूरी शुद्धि हो जाती है। अतः परम पावन जस का विस्तार करने के लिए भगवान यह कर्म करते हैं, यह भाव। तो भगवान का जो कर्तव्य था वे किए, और अब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उनके किए हुए कर्मों को रात दिन गाना सुनना, यही कर्तव्य है। इसे सिद्ध हुआ ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दुराशय है संसार में, और भगवान हम जैसे दुराशय को दृष्टि में रख कर यहाँ आते हैं और ऐसा कर्म करते हैं कि जीव इसको गावे और सुने। हरि बोल, ठीक से बैठे, ठीक से। श्रवण संभृतया प्रबुद्ध सत्श्रद्धया तेजस से पहले लेंगे। आपके यश में श्रवण से बढ़ी हुई, नहीं परिपुष्ट, श्रवण से परिपुष्ट अभिवृद्ध सत श्रद्धा द्वारा। भगवान के जस में सत श्रद्धा हो, इसके द्वारा शुद्धि होती है। लेकिन वह सत श्रद्धा कैसी हो? सत श्रद्धा का अर्थ है नित्य बढ़ने वाली श्रद्धा, असत श्रद्धा नहीं थी। आज बढ़ी हुई है, एक सप्ताह सुने इसके बाद पता ही नहीं लगता है, इसको सत श्रद्धा नहीं। सत का अर्थ नित्य बनी रहे, और वो अभी प्रवृद्ध, अभिवृद्ध श्रद्धा, बढ़ी हुई श्रद्धा, और श्रवण से संपुष्ट श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है सहज झुका, सहज प्रवृत्ति भगवान के गुणों को सुनने में। लेकिन यह जो प्रवृत्ति है, रुचि है भगवत कथा में, यह पुष्ट कैसे होगी? वो भी श्रवण से ही होगी। भगवान के जस श्रवण में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? तो श्रवण से। और कोई उपाय नहीं है कि दूसरे उपाय से श्रवण की लालसा को बढ़ाया जा सकता है। सुनने पर श्रवण की लालसा बढ़ती है, यह बिल्कुल परफेक्ट वैज्ञानिक बात कही जा रही है। जब कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है तब उसके प्रति ललक होती है। हम लोगों ने देखा है बच्चे सो जाते हैं, तो कोई बच्चा सो गया हो तो माँ उसको जगाती है, खा लो खा लो खा लो, लेकिन बच्चा खाना नहीं चाहता है, निद्रा के आवेश में रहता है। लेकिन किसी तरह जबरदस्ती माँ उसके मुख में जब कोई स्वादिष्ट पदार्थ डालती है तो उसका स्वाद पाकर के उसकी नींद धीरे धीरे खुल जाती है, और उसको परोस करके माँ चली जाती है, वो स्वयं ही खाने लगता है, जग जाता। इसको सत श्रद्धा कहेंगे, भोजन में सत श्रद्धा हो गई, खाने लगा। लेकिन कैसे सत श्रद्धा हुई? खाने से, न कि उसके महात्म्य का वर्णन करने से। खाली आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुकारी करते रहे, इसी में बीत जाएगा। माँ भोजन के महात्म्य का ही वर्णन करती रहे बच्चे से, तो शायद उसके भोजन में रुचि नहीं हो। लेकिन कहीं खिला दे स्वादिष्ट पदार्थ तब देखिए रुचि, तब वो कितना थाली साफ करता है। इस प्रकार से श्रवण संभृतया प्रवृद्ध सत श्रद्धया, श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है, पुष्ट होती है, वो श्रद्धा पुष्ट होती है। इसका तो अनुभव हम लोग किए हैं। जो लोग अधिक सुनते हैं भागवत, वही लोग और सुनने की लालसा रखते हैं, और जो नहीं सुनते हैं तो उनकी श्रद्धा टिमटिमाते हुए दीपक की तरह हल्की होती है। श्रद्धा का अर्थ स्वाभाविक प्रवृत्ति। कहां पर प्रवृत्त होना है? हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए? क्या करने के लिए हमारा जन्म हुआ है? तो तेजसी श्रद्धा, भगवान के जस को सुनने और बोलने की लालसा होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसी के लिए भगवान का अवतार होता है, हम जीवों के हित के लिए। अशुद्ध है इस संसार में हम लोगों की शुद्धि भगवान सोचते हैं। जैसे कोई माँ अपने छोटे से शिशु के गंदगी को दूर करना चाहती है स्नान आदि करा करके, तो भगवान समस्त जीवों के अविद्या को दूर करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि इस जगत में प्रकट होकर के जब तक हम मनोहारी लीला नहीं करेंगे तब तक जीव की शुद्धि नहीं हो सकती। तो आप इसीलिए यहाँ आकर के विविध कर्म करते हैं, गोवर्धन धारण आदि करते हैं, तो जीव इनको कहे सुने और शुद्ध हो जाए। अतः आपके यश के प्रति बढ़ी हुई वह श्रद्धा हमारे अशुभाशय के लिए धूमकेतु बने। धूमकेतु मतलब अग्नि, जला दे। धूम मन धुआं, केतु मन झंडा। धुआं जिसका झंडा है, केतु है, उसको धूमकेतु कहते, मतलब अग्नि दे, अग्नि।
श्यानास्तवान घृरशुभाशय धूम केतु क्षेमाययो मुनिभिराद्रहृदो यमानः यः सात्वतैः समविभूतयात्मवद्भिः व्यूहेऽर्चितः सवन सह स्वरति क्रमाय।
तदेवं त्वज्जसि श्रद्धा एव शुद्धि हेतु अस्माभिस्तु तवाङ्घ्रि दृष्टो अतः तवाङ्घ्रि न अशुभाशय धूम केतु स्यात्। आपके यश के प्रति बढ़ी हुई श्रद्धा ही जीवों को पूर्णतः शुद्ध कर देती है, तो फिर आपके चरण कमलों के लिए क्या कहना है। आपके यश के प्रति बढ़ी हुई श्रद्धा जब शुद्ध करती है तो आपके चरण कमलों के दर्शन के लिए क्या कहना है। तो तवांग्रि दृष्ट अतः, आपका चरण कमल हम लोगों के दृष्टि पथ में आया, मतलब आपका दर्शन हुआ। चरण बड़े लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आपके श्री चरण का दर्शन हुआ, अतः तब अंघ्रि न अशुभाशय धूम केतु स्यात्। आपका चरण अशुभाशयानाम विषय वासना नाम धूम केतु तब दाहक अग्नि स्यात्। हमारे अशुभ आशय, हमारे दूषित अंतःकरण को, विषय वासना भावित अंतःकरण को शुद्ध करने में कारण बने। विषय वासना यह कूड़ा करकट की तरह कही गई है, हृदय में जमी हुई है अनंतकालीन वासनाएं, वो अशुभाशय कहो। विषय विषयों की वासनाएं, और एक दो वासना नहीं है, बहुत बहुत वासनाएं हैं। ऐसे सब प्रकट नहीं रहती है, प्रकट कुछ ही वासना एक साथ होती है, बाकी सबका लाइन लगा हुआ है। वो रहती है, प्रकट होती है, फिर सुप्त रहती है, प्रकट रहती है, लेकिन हृदय में बसी हुई है, कोई अपवाद नहीं है। वास्तव में इस युग में शुद्ध आशय का व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, कठिन क्या, असंभव कहा जा सकता है। जिसके हृदय में भगवत प्रीति के अलावा, भगवत सेवा के अलावा और कोई वासना न, ऐसा पुरुष मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ। ब्रह्मा शिव आदि देवता इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वे बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े सुख में हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका यह दर्शन, आपका चरण कमल हमारे हृदय में अन्य वासनाओं को न उठने दे। जैसे प्रहलाद महाराज ने मांगा है भगवान सिंहदेव से कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे हृदय में कामनाओं का उदय न हो। उदय न हो इसका मतलब यह है कि यह आपका सुंदर स्वरूप, आपका यह चरण कमल ही हमारे हृदय में हमेशा रहे, और अन्य वासना यदि हो तो उसके लिए यह धूम केतु अग्नि के समान हो, जला करके राख कर। आपका चरण कमल हमारे अशुभाशय के लिए धूम केतु बने। आपका जब भी ध्यान हो आपके स्वरूप का, तो इसी की वासना मन में भरी रहे, इसी की लालसा रहे, और अन्य जो दूषित वासनाएं हैं वे जलकर समाप्त हो जाए, उनका दाहक बने आपका स्वरूप। और यही सिद्धांत है कि जब तक भगवान के उस सुंदर रूप के प्रति दृढ़ लालसा जीव की नहीं होती है, तब तक अन्य वासनाएं हृदय में बसी रहेंगी, घेरी रहेंगी।
श्यान स्तवांगशुभाशय धूम केतु क्षेमाययो मुनिविराद्रहृदोयमान न अस्माकम् अशुभाशय धूम केतु। अस्माकम् अशुभाशया नाम विषय वासना नाम,
अशुभ आशय कहते हैं विषय वासनाओं, अशुभ आशय। एक शुभ आशय होता है, शुभ का अर्थ होता है सुख, इसके बिल्कुल स्वरूप में जब अंतःकरण होता है, जहां केवल भगवान का रूप, भगवान का गुण, उनकी लीलाएं, नाम आदि उदित होते हैं, सहज अट्रैक्शन जब बना रहे, तो इसको शुभ आशय कहते हैं। और अशुभ आशय का अर्थ होता है प्राकृत विषयों का संग्राहक आशय, जो पकड़ कहीं से। जैसे हम लोग देखते थे, लिखते थे, तो पेन ऐसा मिलता था कि पेन कभी कभी ज्यादा सिलाई उगल देता था, तो सोखने के लिए यही सुख, यही सुख, तो उसको सोख करके वो खुद काला हो जाता, यही सुख पेन। तो इस समय हम लोगों का हृदय ऐसा है कि प्राकृत विषयों के लिए तो यही सुख है, लेकिन भगवान को पकड़ने में वो बिल्कुल उस तरह से बैड कंडक्टर है जैसे बिजली को पकड़ने में प्लास्टिक, प्लास्टिक में नहीं धराती है ना। तो अब भगवान के रूप गुण आदि को पकड़ने में तो प्लास्टिक हो गया, और संसार को पकड़ने में सही सोख कहा गया, पूरा पूरा आत्मसात कर लिया, चित्त की दशा होती। लेकिन भगवान का रूप यदि हृदय में उदित रहता है तब दूसरी वासनाएं उदित हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा हल्का उदित हुई एक आध खरपात की तरह, तो वहीं पर प्रचंड अग्नि की तरह भगवान का रूप रहता है, तब दाह कर उन्हें जलाकर खत्म कर। तो आपका चरण कमल हमारी अशुभ वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि बने। श्याद कथम भूत है अंग्री, कैसा चरण कमल? तो यह क्षेमाय मुनि भी आर्द्र हृदय पूज्य बाना, जो चरण कमल क्षेम के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मुनियों के द्वारा आर्द्र हृदय से पूज्य बाना ढोया जाता है, चिंतन किया जाता है। मुनि जन भगवान के रूप को हृदय में ढोते रहते हैं, वो ही मानकर लिए रहते हैं, जहां जाते हैं वहीं वह सांवरी मूर्ति बसी रहे, हृदय ते वह सांवरी मूर्त छीन नहीं तो उत जात। मुनि कहते जो ढोए ढोए चलते हैं छेम के लिए। सबसे बड़ा जीव का क्षेम क्या है? क्षेम यह है कि अशुभ वासना न उठे और भगवान का वह सर्व मंगल रूप हृदय में बना रहे, भगवत प्रीति के लिए इसका अर्थ ये। तो भगवान के रूप को, चरण कमल को वे आर्द्र हृदय से ढोते रहते, चिंतन करते, शुष्क हृदय से नहीं, आर्द्र हृदय। तृतीया विभक्ति में मुनियों का, भक्तों का हृदय आर्द्र रहता है, मतलब भगवान के प्रति भाव रस से सिक्त रहता है, प्रेम से चिंतन करता है। कुछ लोग भगवान का चिंतन बिल्कुल शुष्क हृदय से कभी कभी करते हैं, जैसे कुछ पतंजल वाले होते हैं, पतंजल जो पतंजलि के फॉलोअर लोग, वे भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, लेकिन उनका आशय होता है मन को एकाग्र करना, एक जगह स्थित करना, इसके लिए चिंतन करते हैं। और जब मन एकाग्र हो जाता है तब भगवान को छोड़। तो कहां पर एकाग्र करते हैं हमें समझ में नहीं आता। इस तरह के बहुत से कपटी लोग होते हैं संसार, देखने में लगता है वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो भगवान का ध्यान नहीं होता। थोड़े काल के लिए, चूंकि भगवान अट्रैक्शन वाले हैं, सुंदर है, इसलिए चित्त को एकाग्र करे, और चित्त जब एकाग्र हो जाए तो मल मूत्र का चिंतन चालू करो, भगवान को हटाकर भगवत सॉन्ग घाट आदि वाले सब ऐसे ही थे, देखने में लगता है कि विष्णु का चिंतन कर रहे हैं, ये कपटी लोग, धूर्तज्ञानी लोग, ये भगवान को कभी नहीं समझे। थोड़ा विवश नहीं, आर्द्र हृदय होना चाहिए। और आर्द्र जानते हैं हृदय की आर्द्रता क्या है? हृदय की आर्द्रता है भगवान में अपनत्व होना, सख्य भाव होना या प्रेम होना किसी तरह से। भगवान का चिंतन भगवान के लिए जब करते हैं तब उसको आर्द्र हृदय कहा जा सकता है। आर्द्र हृदय ऐसा नहीं कि जैसे टेलीविजन में कुछ लोग भगवान की पूजा करते हुए देखे जाते हैं। जैसे मैं विदेश में देख रहा था एक दिन रामायण वीडियो, तो सबरी लाल आकर के भगवान राम को फल दे रही, आग्रह कर रहे खाने के लिए, करने के लिए, करने के लिए। लेकिन सबरी जो बनी थी वो भी एक सिनेमा की नायिका थी, सिनेमा की अभिनेत्री, और जो राम बना हुआ था वो भी वैसा ही था। तो एक नाटक है, वहां कोई फल खिलाने आदि की बात नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे वे लोग आंसू भी भर लेते हैं आंख में पता नहीं है, क्या लगाते हैं? ओ तो हाँ, मतलब इस तरह का तो ये नाटक करते, इसी तरह से कुछ लोग भगवान के ध्यान का नाटक हृदय में प्रीति नहीं। लेकिन जो मुनि जन होते हैं वास्तव मननशील, जिन्होंने मनन करके आसार संसार का त्याग कर दिया है, भगवान के रूप को दृढ़ता से पकड़ लिया है हृदय, तो उनके प्रति भाव रखते रस रहता, आर्द्र हृदय का। जहां जाते हैं वहीं भगवान को ढोते रहते हैं हृदय। यह शब्द कितने सुंदर है, आर्द्र हृदय उह्य माना, उह्य माना। हम लोग भी संसार, हम लोग भी कहीं चलते हैं तो हृदय में जो चीज चिंतन कर रहे हैं इसका मतलब है उसको ढो रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं उसको ढो रहे हैं हृदय। तो मुनि जन क्या ढोते हैं? तवांग्री, भगवान को ढोते हैं हृदय में। और आत्मवद भी सात्वत सम विभूत स्वरति क्रमाय चतुर्भ्य सवनस अर्चित। और वो चरण कमल कैसा है जो आत्मवान है उनके द्वारा अर्चित। आत्मा त्वमेव नाथो जेशम, आत्मा का अर्थ नाथ, आत्मवान है मतलब आप वाले है, आपवान है ये आत्मवान, आत्मवान मतलब आपवान, आप जिनके नाथ के रूप में प्राप्त हैं, मतलब सर्व चिंता शून्य जो धीर पुरुष है वे आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। आत्मवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आत्मा त्वमेव नाथो जेशम तथा च चिंता शून्यत्वात् धीर की व्याख्या, धीर करते हैं। श्रीमद् भागवत में बारंबार यह शब्द आया हुआ है, इसको वनस्पति आयात्मवान कहते हैं। धीर पुरुष है, सब प्रकार के भोगों की वासना से शून्य है, वे भगवान के रूप की अर्चना करते, प्रेम करते, पूजा करते। और सात्वत ही भक्तों के द्वारा आपके चरण कमल पूजित अर्चित। अर्चना का अर्थ केवल आजकल जैसे पूजा कर ली जाती है वह अर्थ नहीं होता है। तो पूजा करने के लिए भी मंदिर में पुजारी रखे रहते हैं और वो चावर मर पंखे आदि घुमा देते हैं। तो आज यदि पूजा शब्द कहिए तो लोग उसी को समझ जाएंगे। अर्चना का अर्थ होता है अलंकार, भगवान को सजाना, दिव्य बनाना। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है नहलाती है, खिलाती है, सजाती है, इसको अर्चना करती है ना। आपने देखा है माँ अपने बच्चे को किस तरह से नहलाती है, सजाती है, तिलक करती है, कपड़ा पहनाती है, और इसके बाद उसको सुखी देख करके वो सुखी हो जाती है, इसको अर्चना करती है, पूजा भी इसी को करती है। तो इस तरह भक्त जो है, जिनको सात्वत कहते हैं, वे समविभूत, ये समविभूति के लिए भगवान की अर्चना करते हैं। समविभूति का अर्थ है समाना स्वर्गात वर नरके सुपित कुल्या दर्शन नारायण पराणाम या विभूति प्रेम संपत्ति तस्मय। सम विभूति कहते हैं एक ऐसी विभूति भक्तों को प्राप्त है जो विभूति स्वर्ग नरक अपवर्ग में समबुद्धि कर देती है, तो प्रेम संपत्ति कहते हैं। जैसे छठवें स्कंध में लिखा गया स्वर्गात वर्ग नरकेश अपितुल्या, तो विभूति स्वर्ग नरक अपवर्ग में समबुद्धि कर देती है, तो प्रेम संपत्ति कहते हैं। जैसे छठवें स्कंध में लिखा गया स्वर्गात वर्ग नरकेश अपितुल्या दर्शन, जो नारायण परायण भक्त होते हैं वे स्वर्ग नरक या अपवर्ग में भी तुल्य अर्थ देखते हैं, तुल्यार्थ दर्शन, उनका जो अर्थ है कृष्ण प्रेम वो कहीं भी देखते हैं। स्वर्ग में गए तो वे उसी को देखते हैं, नरक में भी वही देखते हैं, अपवर्ग में भी, मतलब उन्हें वही चाहिए। तो ऐसे अनन्य भक्तों को जो प्रेम संपत्ति प्राप्त है, उस प्रेम संपत्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, आदर करते हैं। स्वरतिक्रमाय, स्व अतिक्रमाय, स्वर्ग का अतिक्रमण करने के लिए, स्वर्ग आदि वासना का त्याग करने के लिए, यह भी भाव है। भाव इसका वास्तविक यह है कि स्व अतिक्रमाय, इस संसार में बहुत से भौतिक सुख हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, और जीवों को इनकी कामना होती ही रहती है। स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, इसी पृथ्वी पर मनुष्य को क्या क्या कामना होती है, कभी कभी तो कुछ विदेशी चीजों को लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। अगर कह दिया जाए कि ये इंग्लैंड का बना हुआ है तो उसको ज्यादा चाव से लेंगे, कुछ ऐसी मानसिकता बन गई, या यहाँ की वस्तु है, यहाँ की वस्तु है, इस कंपनी की वस्तु है, उस कंपनी की वस्तु है, ये है वो है, इनका ही अतिक्रमण नहीं कर पाते। तो चित्त इस पृथ्वी के ही भोगों में लगा हुआ है, और जिसको स्वर्ग का सुख सुलभ होगा वह क्या स्वर्ग सुख का अतिक्रमण कर सकता है? स्वर्ग में अप्सराएं हैं, विमान हैं, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं, वहां का वातावरण यहां से लाखों गुना अधिक अच्छा है, तो वह स्थान मिले, वे सब अप्सराएं मिले, विमान मिले और अमृत मिले, वैसा सुंदर देह मिले, क्या उस सुख का कोई अतिक्रमण कर सकता है, मतलब उसे छोड़ सकता है? नहीं, यही नहीं छोड़ सकता तो स्वर्ग क्या छोड़ सकता है। लेकिन भक्त जन स्व अतिक्रमाय, स्वर्गीय सुख का अतिक्रमण करने के लिए भगवान की कृपा से स्वर्ग के सुख में भी मन न फंसे, इसके लिए चतुर्व्यूह में सवर्ण सह त्रिकाल में अर्चिता आपकी आराधना करते हैं। त्रिकाल का मतलब है हमेशा, सर्वदा वे आपके रूप में अपने मन को लगाए रखते हैं, इसी रूप में जिसका दर्शन हम कर रहे हैं, और इस सुख के आगे वे स्वर्ग को भी नहीं पूछते हैं। यह भाव भगवान से वैराग्य भी मांगना चाहिए, और मांगना क्या है, यदि हम भगवान के रूप में मन को लगाए रखेंगे तो अपने आप वैराग्य रहेगा। ये कोई बहुत सुगम बात नहीं है वैराग्य हो जाना, वैराग्य तब माना जाएगा किसी व्यक्ति में कि कोई ऐसा काल हो, कोई ऐसा देश हो जहां कोई व्यक्ति किसी को ना देख रहा हो, और उसको ये विश्वास हो जाए कि हमारे इस कर्म का पता भी नहीं चलेगा, और कोई सुंदरी युवती स्त्री स्वयं ही उसको प्रस्ताव डाले तुम्हारे साथ मुझे संग चाहिए, और उसको व्यक्ति को पूरा विश्वास हो जाए कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पता चलेगा, और उस समय भी यह वह व्यक्ति यदि विचलित न हो मन से भी, तो इसको कहा जाएगा वैराग्य। क्या किसी में इस तरह का वैराग्य है? नहीं है। लेकिन भगवान में जब रूप, भगवान के रूप में मन आसक्त हो जाता है, तो वह अपने आप ऐसी स्थिति हो जाती है कि मनुष्य इस विशाल भाव को, इसके सुख को उस तरह पार कर जाता है जैसे पथ चलते ही मनुष्य गोपद से बने हुए गड्ढों को पार कर जाता है। वह आविष्ट शब्द ब्रह्मा जी बोले गर्भस्थिति, जब भगवान में मन आविष्ट हो जाता है तब तो उस स्वर्ग का सब कुछ भूल सकता है। तो सात्वत भक्तजन स्वरति क्रमाय, स्वर्ग का अतिक्रमण करने के लिए और प्रेम संपत्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए और भगवत संबंध शून्य वस्तुओं में वैराग्य के लिए, अनास्था के लिए आप आपका ध्यान करते हैं, आपकी पूजा करते रहते हैं। स्व अतिक्रमण का अर्थ है स्वर्ग आदि वासनाओं के त्याग के लिए अथवा स्वर्ग का अतिक्रमण करके वैकुंठ जाने के लिए। सवर्ष त्रिकालम, चतुर्व्यूह में आपकी आराधना करते हैं, मतलब आप ही चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं वासुदेव आदि रूप से, तो आपके भिन्न भिन्न रूप की उपासना में करते हैं। इस तरह देवता लोग भगवान के रूप पर अपने मन को और अपनी वाणी को केंद्रित कर रहे हैं। सब मिलाकर के सार यही है कि भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद क्रम यही है जो श्रृंखला बंध शब्द आ रहा है, य शब्द है अंत में, फिर य आ रहा है। यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्व राग्दौ त्रय्या निरुक्त विधि में सहवीर गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगी भीरत आत्म माया जिज्ञास भी परम भागवत ही परिष्ट। केवल इतना ही नहीं, भक्तजन मुनिजन धीर और मुमुक्षु ये तो आपके रूप का चिंतन करते ही हैं, यहाँ तक कि कर्मकांड में लगे हुए मीमांसक, मीमांसक शब्द प्रसिद्ध है इनके लिए, जो मीमांसक है मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार चलने वाले, तो वे भी जब यज्ञ करते हैं प्रयत पाणि भी अध्वराग्नौ, प्रयत पाणि, प्रयत पाणि का अर्थ होता है हाथ को समाहित करना अथवा दोनों हाथ को समाहित करना, और इस प्रयत पाणि भी बहुवचन में इसलिए प्रयोग है कि बहुत से ब्राह्मण एक साथ बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, तो अपने अपने प्रयत हाथों में हवीर गृहीत्वा, हवीर ले करके, और वे आपका ही चिंतन करते हैं, आपके इसी रूप का चिंतन करते हैं और वो हवी अर्पण करते हैं। जस चिंत्यते प्रयत पाणी भी ध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्त बिजनेस हवीर गृहीत्वा, त्रयी के द्वारा वेद के द्वारा निरुक्त विधिना है, इस है परमेश्वर जो विधि कही गई है वेद के द्वारा, वे भी अध्वर अग्नि में यज्ञाग्नि में जब हवन करना चाहते हैं तो आपका ही ध्यान करते हैं। तो मीमांसक जन यज्ञ कराने वाले वे भी आपका ध्यान करते हैं, और अध्यात्म योग उत योग भी आत्म माया जिज्ञास भी परम भागवत परिष्ट। उतर इतना ही नहीं, अध्यात्म योगे योगी भी अपि आत्म माया जिज्ञासु भी यह चिंत्यते, अध्यात्म योग में योगियों के द्वारा भी आत्म माया के जिज्ञासुओं द्वारा भी यह चिंतते, आपके चरण कमल का चिंतन किया जाता है। अध्यात्म योग का है आत्माधिकारे योगे, आत्मन परमात्मनो अधिकार फलत स्फूर्ति तस्मिन योगे। चित काग्यावस्था या बहिर्वृत्ति विरासता या कारण लय योग। अध्यात्म योग आत्मा अर्थात परमात्मा ही जिस योग में अधिकार है, फल के रूप में जिनकी स्फूर्ति होती है, वह है अध्यात्म योग। ऐसा योग जिसमें परमात्मा ही फल माने गए हो, स्फूर्ति होती हो। जब चित्त एकाग्र होता है भगवान में तो बहिर्वृत्ति का लोप हो जाता है और अंतर्वृत्ति होती है, तो उस अंतर्वृत्ति में भगवान उदित होते हैं हृदय में, तो इसको अध्यात्म योग कहा जाता है। आत्मा मतलब भगवान, भगवान जिस योग के अधि, अधि मतलब फल हो जाते हैं। अधि और अधिकार का दोनों एक ही अर्थ होता है। अधिकार का मतलब होता है अधिक करना, अधि मतलब सबसे श्रेष्ठ हो जाना मानना, इसको अधिकार कहते हैं। जैसे ममकार शब्द है, अहंकार शब्द है, ऐसे अधिकार शब्द। जिस योग में भगवान ही परम फल के रूप में निश्चित हो, हृदय में जिनकी स्फूर्ति हो निरंतर, उसको अध्यात्म योग कहते हैं। ऐसा योग जिसमें आत्मा ही अधिक है, फल है, ऐसे योगी लोग भी आत्ममायम जिज्ञास भी, आत्ममायम मतलब आपकी माया, आत्मन तो माया अणिमादी जिज्ञासु होते हैं, तत्व कामना से युक्त होते हैं, ये भी आपका चिंतन करते हैं। तो योगी लोग उस योग का आचरण करते हैं, उसमें आपकी स्फूर्ति होती है और उन्हें यदि कामना होती है किसकी, आत्म माया की, आपके माया की मतलब अणिमादी सिद्धियों की यदि कामना होती है, तो उनके द्वारा भी आपका यह चरण कमल ही पूजित होता है। एक वर्ग तो यह हुआ, लेकिन सुप्रीम बता रहे परम भागवत यह परिष्ट नित्य मुक्त निष्काम महाभागवतों के द्वारा आपका चरण कमल सर्वतः पूजित है। परिष्ट परिष्ट, ऐसा आपका चरण कमल हमारे अशुभाशय के लिए धूमकेतु बने। न अशुभाशय धूमकेतु स्यात् पूर्वेण अन्वय, ये पूर्व से इसका अन्वय। यहाँ कई वर्ग बताया गया जो भगवान की आराधना करते हैं। आगे गिनाएंगे इसको हम कौन कौन कर, तो सबसे पहले मुनि, मुनि आठ या दस वर्ग गिनाए हैं जिसमें परम भागवत सबसे श्रेष्ठ है। तो परम भागवतों के द्वारा यह परिष्ट, परम भागवत यह परिष्ट, परिष्ट का अर्थ है सर्वतः पूजित है, सब प्रकार की कामना से शून्य होकर वे आपके इस रूप का आदर करते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं। इसमें हाँ इस तरह से गिनाया गया, मुनि सात्व आत्मविद जागी योगी परम भागवतानम शरणम छाव। एक बार तीनों कहा है, दूसरा सात्व, तीसरा आत्मविद, चौथा जागी, पांचवा योगी और छठवां परम भागवत। इन छावों के बीच में परम भागवत पुरुषों में ही
आपकी अधिक प्रीति देखी गई है, तो उसी को कर्मोच्च न्याय से कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो वनमाला आपके श्री विग्रह पर है, तो आपके बाहों के बीच में छाती पर लटकी हुई जो वनमाला है, और इस यहां तक कि वासी वनमाला, वासी मतलब कुछ देर पहले की अर्पित की हुई वनमाला भी आप धारण करते हैं, क्योंकि आपके भक्तों के द्वारा अर्पित की हुई, अतः इसे आप नहीं निकालते हैं। भले लक्ष्मी जी इसके प्रति संस्पर्धा करें, लक्ष्मी जी समझती है कि हमारी सौत कहां से आ गई, मैं जहां रहती हूं यही ये लटकी हुई है। यद्यपि लक्ष्मी जी कभी भी ऐसा भाव नहीं लाती है, कोई भक्त यदि भगवान का श्रृंगार करता है, वनमाला अर्पित करता है, तो लक्ष्मी जी वास्तव में प्रसन्न होती है, भक्त को आशीर्वाद देती है, भक्त की सेवा से संतुष्ट होती है। लेकिन उत्प्रेक्षा देवता लोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी जरूर दाह करती होंगी। जिस वक्षस्थल पर मैं रहती हूं वहां पर हमेशा लटकी रहती है वनमाला, इसको प्रतिपत्नी वक्त, प्रतिपत्नी मतलब प्रतिबंध भूता पत्नी, सौथ। तो भले लक्ष्मी जी दाह करें या कुछ भी, लेकिन फिर भी आप माला नहीं उतारते हैं, क्योंकि अकिंचन भक्तों के द्वारा भक्ति के साथ माला आपको अर्पित की है। वास्तव में भगवान का स्वभाव है, भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा दिए हुए उपहार को लिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल नेता लोगों को अगर माला पहनाइए, उनके बहुत शुद्ध भक्त भी उनको पहना है, तब भी वो कुछ तो पहनते ही नहीं है, हाथ से ही उतार देते हैं, लेकिन कुछ पहन करके एक सेकेंड में निकाल कर बाहर करो, माला पहनते ही नहीं, पहनते ही अच्छा ही, तो माला का अधिकारी है। लेकिन परमात्मा है तो प्रेरित करता है नहीं पहनता, परंतु भगवान का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे विग्रह भी मंदिरों में देखा होगा, बहुत देर की पहनाई ही माला पड़ी रहती है। भगवान ये विचार नहीं करते कि अरे लक्ष्मी जी हमारी पत्नी है, ये माला ताजा पहनाएंगे, इसको पहनूंगा, ये बासी माला उतार करके फेंक, नहीं पहनूंगा, ऐसा वे नहीं कर, इसी को ये आगे कह रहे हैं। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नी वत्स्री यः सुप्रणीतम् मम यार्हणमाददन्न भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः। एतेषां च मुनिसात्वतारिणां शरणा सेवका न मध्ये परम भागवतेषु लक्ष्म्या अपि कौ प्रीति अधिका इति संस्तुवन् प्रविष्टया इति। ये छ किस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसमें तो पहले बताया गया विवांसकों के द्वारा इंद्रादि देवता के रूप में, पातंजलों के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध द्वारा, सांख्यों के द्वारा प्राकृतत्व संकलम संकल्पन द्वारा, कथंची तवांग्री चिंत्यते न तो त्वं जानन्ति न च साक्षात् तवांग्रीं पूजयन्ति अतस्तव परम भागवता एव प्रिया इत्याह। और लोग भगवान का चिंतन करते हैं, परंतु पूरा पूरा भगवान को जानते नहीं है और पूजा भी नहीं करते, साक्षात पूजन नहीं करते, परंतु परम भागवत पुरुष है आपको जानते हैं, मतलब जानने का अर्थ आदर करते हैं, प्रेम करते हैं और पूजा भी करते हैं, और उनकी पूजा को आप स्वीकार करते हैं। हे विभो पर्युष्टया वनमालया प्रतिपत्नीवत यम भगवती श्री संस्पर्धिनी, पर्युष्ट काश है, बहुत देर से पहनाई हुई इस वनमाला के प्रति भी भगवती श्री ही संस्पर्धिन अहम जत्र बसामी तत्रैव वक्षति पर्युष्टा अपियम बस्ती की प्रति पत्नीवत पत्नी। मैं ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी ये मन में सोचती है कि मैं जिस वक्ष स्थल पर बसती हूँ वहीं पर ये भी रहती है, यह मेरी शौक हो गई। लगता है कि लक्ष्मी जी संस्पर्धिनी है, फिर भी आप इस वनमाला से प्रेम करते हैं। क्या सोचकर प्रेम करते हैं? सुप्रणीतम भक्त अर्पितम या विधि प्रीतिया सुप्रणीतम, हमारे भक्तों में इसे खूब अच्छी तरह से गुज कर मुझे अर्पण किया है, मेरी पूजा की है, इसीलिए आप उनकी पूजा को दीपदा धारण किए रहते हैं। तो इस प्रकार अपने भक्तों से जो प्रेम करते हैं उन भगवान के चरण कमल हमारे अशुभ आशय के लिए धूमकेतु बने। अर्थात हे कृष्ण, आपका यह गुण और रूप हमारे हृदय में हमेशा उदित रहे। वनमाला लगाया हुआ यह रूप और भक्तों के प्रति यह प्रेमिल स्वभाव हमारे हृदय में यदि उदित रहेगा तो हमारे हृदय में अन्य कोई भी वासना नहीं आ सकती है, केवल आपका ही चिंतन होगा। क्रम संदर्भ में श्री लजीव गोस्वामी ने कहा है कि लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म शिव आदि की जो ये बात है ये प्रेम के साथ विनोदोक्ति मात्र है, भगवान से भी विनोद कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी को सुना रहे होंगे भाई क्यों नहीं दुख लगेगा, जिस वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी रहती हूँ वही वनमाला रहे तो, और वो भी वनमाला एक गरीब भक्त के द्वारा अर्पित की गई है जबकि लक्ष्मी जी ठीक उसके विपरीत सबसे धनी। तो यह विनोद उक्ति है प्रेम के साथ। इसी तरह से भगवान के गले में लटकी हुई वनमाला का यह चिंतन है, भगवान अपने भक्तों के द्वारा अर्पित किए गए तुच्छ से तुच्छ उपहार को बड़े गौरव के साथ प्रेम से धारण करते हैं, यह भगवान का स्वभाव। इसीलिए गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम योगे भक्त्या प्रयत्ति तदहम भक्ति प्रियतम स्नामी प्रियतात्मन, हमें कोई भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल देता है तो मैं उसको खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इतना महान होकर के भी भगवान हमारे स्नेह को प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस मनुष्य समाज में मान लीजिए कोई बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति है, बहुत गरीब है और किसी महान व्यक्ति को कुछ देना चाहता है, पहले ही जो महान मन तथा कथित लोक दृष्टि से महान, अगर उसको पता लग जाए कि हमसे भेंट कर रहा है यह देने के लिए तो लाइन में भी नहीं आने देगा, नहीं नहीं हटो हटो। परंतु भगवान अपने भक्तों के उपहार को पूजा को स्वीकार करते, उस चिन्ह को धारण किए रहते, यह उनका स्वभाव है। सब मिला करके भगवान प्रेमी है। तो हृदय में भगवान के इस गुण का और वनमाला आवेष्टित रूप का चिंतन स्फूर्ण बनी रहेगी तो कभी भी हृदय में विषय वासना का उदय नहीं हो पाएगा। यह भाव आपका यह रूप और गुण हमारे अशुभाशय का धूप के उदाहक बने। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती पतिपात्नी वत्स्रिः
यासु प्रणीत मम यार्हण माददन्नो भूयात् सदाङ्गिरशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव चम्मुः स्वर्गाय साधु सुखले स्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामहं नः नस्योत गावैवजस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरद्यमानः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयोः परस्य शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरलय उत्तम पुरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमांसमधिगम्य जयाशु वीर्यम् धत्ते महान्तमिव गर्भमनोगभिजः सोऽयं तयानुगतयात्मनयाण्डकोशम् ऐमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तस्तुसश्च जगतश्च भवानधीश जन्माय योऽर्थ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुसन्नपि हृषि कपतेन लिप्त येने स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मन्त्र सौण्डही पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियम् विमथितुम् कर्णेन विद्वा विभव्यस्तवामृतकथोद्वहास्त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः शमला निहन्तुम् आणौ श्रवम् श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयम् शुचिसदस्तौपस्पृशन्ति पर्युष्टया प्रयुषित तवा आपकी विभो हे विभो वनमालया वनमाला से इयं यह आपके वक्षस्थल पर स्थित है। संस्पर्धिनी ईर्ष्या करने वाली भगवती सर्व सौभाग्य की निधि है। प्रति पत्नीवार सब की तरफ श्री ही श्री लक्ष्मी यह जो आप सुप्रणीतम सुष्टु संपादित अमुया उपारहणम पूजा अर्हणम पूजा आददा स्वीकृतवान नह हमारे भूयात हो सदा सदा अंग्रिही आपका चरण सुभाष धूम केतु हो अशुभ वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि तो ऊपर छह प्रकार के आराधकों का उल्लेख किया गया था। मुनिजन सत्वतगण आत्मान गण जागी गण योगी गण और परम भागवत गण इन छह में जो भगवान की सेवक है उनमें परम भागवतेषु लक्ष्मी अपि प्रीति अधिकाय की संस्तुवन्ति जो परम भागवत हैं उनमें उनके प्रति भगवान का स्नेह श्री जी से भी अधिक देखा गया है यह कहते हुए स्तुति कर रहे हैं।